अध्याय 11 प्रेमाख्यानों की प्रवृत्तियां। प्रेमाख्यानों की परंपरा बहुत पुरानी है और ये अपने बीज रूप में प्राचीन वैदिक साहित्य तक के अंतर्गत पाए जाते हैं। ऋग्वेदीय संहिता के कई सूक्त जिनमें संवादों के प्रयोग आते हैं और जिनमें प्रेम भाव की भी चर्चा है, इन प्रेमाख्यानों की कोटि में रखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए इस संहिता के 95वें सूक्त में जो उर्वशी एवं पुरुरवस का प्रेमालाप आया है, अथवा उसके ही 10वें सूक्त में जो यम एवं यमी का संवाद मिलता है, वे दोनों इस प्रकार की रचनाओं के प्रारंभिक रूप की ओर संकेत करते जान पड़ते हैं। उर्वशी एवं पुरुरवस के इस कथोपकथन को बहुत से विद्वानों ने क्रमशः उषा एवं सूर्य के पारस्परिक संबंध के अर्थ में समझाने की चेष्टा की है, परंतु इस प्रसंग के किसी न किसी बृहद रूप के फिर शतपथ ब्राह्मण तथा कृष्ण यजुर्वेद के काठक में भी आ जाने से इस विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता। इसके सिवाय महाभारत एवं पौराणिक साहित्य के रचना काल तक जब वही उर्वशी पूरी अप्सरा की कोटि में पहुंच जाती है तथा पुरुरवस का भी रूप एक राजपुरुष बनकर निखर आता है, तो उन लोगों के प्रणय रहस्य को भली भांति समझ लेने में विलम्ब नहीं लगता। हरिवंश, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, वायु पुराण तथा वामन पुराण तक तो पुरुरवस एक प्रसिद्ध क्षत्रिय वंश के पूर्व पुरुष का भी रूप धारण कर लेते हैं, फिर भी यम एवं यमी के संवाद को इस प्रकार विकास पाने का कभी अवसर नहीं आता, जिसका कारण यह हो सकता है कि उनकी बहन यमी की ओर से अपने भाई यम के प्रति यौन संबंध का प्रस्ताव है, जो सुसंस्कृत आर्यों की सामाजिक पद्धति के प्रतिकूल जाता दिख पड़ता है। महाभारत एवं पौराणिक साहित्य में अनेक ऐसे भी प्रेमाख्यान आते हैं जिनका कोई पता प्राचीन वैदिक साहित्य में नहीं चलता। ये सर्वथा नवीन जान पड़ते हैं और इस प्रकार के साहित्य को यदि विविध आख्यानों का भंडार भी कहा जाए तो कोई अतियुक्ति न होगी। महाभारत के आदि पर्व में दुष्यंत एवं शकुंतला का प्रेमाख्यान आता है और उसके वन पर्व में नल और दमयंती की कथा आती है, जिन दोनों की भी चर्चा पीछे विभिन्न पुराणों में की गई पाई जाती है। इसी प्रकार अर्जुन और उल्पी, अर्जुन और उर्वशी तथा अनिरुद्ध एवं उषा आदि से संबंध रखने वाले अनेक प्रेमाख्यान भी उनमें से कई रचनाओं में उपलब्ध है। इन्हें न केवल एक से अधिक बार दोहराया गया है, अपितु इनके आधार पर पीछे बहुत सी सुंदर काव्य कृतियों की भी सृष्टि की गई है। उदाहरण के लिए दुष्यंत एवं शकुंतला तथा पुरुरवस एवं उर्वशी के प्रेमाख्यानों का आश्रय ग्रहण कर महाकवि कालिदास ने अपने दो अमर नाटकों की चर्चा की है एवं रचना की है। नल एवं दमयंती की कथा के आधार पर महाकवि श्री हर्ष ने अपने महाकाव्य नैषधीय चरित्र का निर्माण किया है। कहना न होगा कि ऐसे कवियों ने मूल कथा वस्तु को अपने काव्य कौशल द्वारा कलात्मक विस्तार दिया है। उपर्युक्त नूतन घटनाओं के विधान, विभिन्न पात्रों के सफल चित्रण तथा वातावरण आदि के सूक्ष्म अंकन द्वारा ये कृतियां वस्तुतः सजीव बन बैठी हैं। ऐसे प्रेमाख्यानों के क्रमिक विकास का इतिहास अत्यंत रोचक है और इसका अध्ययन हमें अपनी संस्कृति के समझने में भी सहायक हो सकता है। प्रेमाख्यानों का विचित्र साम्य। इस प्रकार के वैदिक पौराणिक तथा काव्यात्मक आख्यानों की कई बातों में हमें एक विचित्र साम्य दिख पड़ता है। सर्वप्रथम इनके प्रेमी एवं प्रेम पात्रों में से या तो दोनों ही किन्हीं राज परिवारों के सदस्य हुआ करते हैं, अथवा इनमें से एक अर्थात कम से कम प्रेमी का संबंध किसी ऐसे परिवार से अवश्य हुआ रहता है जो निम्न वर्ग का हो। इसके अपवाद प्राय वही मिला करते हैं जहाँ प्रेम पहले किसी नारी हृदय में अंकुरित होता है। उदाहरण के लिए उर्वशी एक अप्सरा है जो अर्जुन के प्रति पहले आकृष्ट होती है और हिडिंबा एक राक्षसी है जो भीम को चाहने लगती है। इस दूसरी दशा में यह एक बात भी उल्लेखनीय है कि यहाँ प्रेम भाव की परिणति का वैवाहिक संबंध भी हो जाना निश्चित नहीं रहता। प्रेमारंभ साधारणतः प्रत्यक्ष भेंट, स्वप्न दर्शन अथवा गुण श्रवण से भी हो जाता है और इसके विकास में प्रायः सखी सखा पक्षियों एवं देवी सखियों तक से सहायता ली जाती है। इसके उलट फेर में कभी कभी आकस्मिक घटनाओं का भी पूरा हाथ रहा करता है। इसी प्रकार प्रेमी और प्रेमिका के वैवाहिक संबंध का पूर्व रूप अधिकतर गांधर्व का रहा करता है और इसके पहले बहुधा स्वयंवरों की भी रचना कर दी जाती है, परंतु ऐसे प्रेमाख्यानों में प्रायः ऐसे अवसर भी देखे जाते हैं जहां प्रेमी को प्रेमिकाओं के लिए भीषण युद्ध तक करना पड़ जाता है। इसके सिवाय ऐसे प्रसंगों का अंत कभी कभी इस रूप में भी होता है कि इन सुंदरियों का अनेक विरोधियों के बीच में हरण भी करना पड़ता है। फिर भी जहाँ तक सामाजिक व परंपरागत संबंधों का प्रश्न है, अपनी मर्यादाओं को अक्षुण बनाए रखने की भी भरपूर चेष्टा की जाती है। इस प्रकार के भारतीय प्रेमाख्यानों के उदाहरण हमें वैदिक साहित्य से लेकर प्रांतीय भाषाओं के मध्यकालीन साहित्यों तक में बराबर मिला करते हैं। उनमें प्रमुख अंतर केवल कथा वस्तु की सरलता से उसकी सजावट की ओर उत्तरोत्तर विकास होते जाने में भी लक्षित होता है। प्रेमाख्यानों का क्षेत्र। लेकिन हमारे यहाँ उपलब्ध प्रेमाख्यानों का क्षेत्र केवल यही तक सीमित नहीं है। बौद्धों के पाली साहित्य एवं जैनियों की प्राकृत एवं अपभ्रंश कथाओं के अंतर्गत बहुत से प्रेमाख्यान मिलते हैं, जो इनसे कई बातों में भिन्न प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के प्रेमाख्यान अधिकतर लोक कथाओं एवं स्रोतों से आए हुए हैं, तदनुसार उनमें अधिक सरलता एवं निर्व्याजता पाई जाती है। उनके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उनकी कथा वस्तु का संबंध विशेषतः राज परिवारों से ही हो। उनके पात्र बहुधा वैश्यों व शूद्रादि जाति के लोगों में से भी चुन लिए गए रहते हैं। उनमें आए हुए राजाओं को भी किसी साधारण वर्ग की स्त्री के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करते कोई संकोच नहीं होता। उदाहरण के लिए बौद्धों के कठारी जातक में राजा ब्रह्मदत्त बन में गा गा कर लकड़ी चुनने वाली लकड़ी पर आसक्त तो हो जाता है। इसी प्रकार उन्हीं के मणि चोर जातक वाला वाराणसी नरेश सुजाता नाम की एक स्त्री पर आसक्त तो हो उसके पति पर मणि की चोरी का अपराध लगाता है तथा उसका सिर तक कटवा लेना चाहता है, किंतु उस साध्वी की प्रार्थना पर वह इंद्र द्वारा स्वयं मार दिया जाता है। कठारी जातक वाले प्रेमाख्यानों में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि उसका राजा ब्रह्मदत्त भी अपनी प्रेयसी लकड़हारिन के गर्भ से उत्पन्न पुत्र को लगभग उसी प्रकार अस्वीकार करता है जिस प्रकार शकुंतला के गर्भ से उत्पन्न बालक को अपनाने से राजा दुष्यंत आनाकानी करते हैं। और वही की बात भांति यहाँ भी एक अंगूठी दिखलाकर स्मरण दिलाने की चेष्टा की जाती है तथा अंत में सफलता मिलती है। जैनियों की प्राकृत गाथाबद्ध रचनाओं तथा उनकी अपभ्रंश धर्म कथाओं में भी हमें अनेक प्रेमाख्यान मिलते हैं। इसमें लीलावती का तथा प्रसिद्ध कथा है। इसमें प्रतिष्ठान एवं सिंघल के क्रंश राजकुमार एवं राजकुमारी के प्रेम एवं विवाह आदि का प्रसंग आता है। इस कथा के अंतर्गत मनुष्य योनि के अतिरिक्त देव योनि के भी पात्र भाग लेते दिख पड़ते हैं और इसका रूप दिव्य मानवी बन जाता है। इसी प्रकार अपभ्रंश की प्रेम कथा पौम श्री चरेऊ के रचयिता उसमें प्रेमी तथा प्रेमिका के उनके पुनर्जन्म के ही अनंतर सफल बनाया है। इन प्रेमाख्यानों में जैन धर्म के विहित साधनाओं के महत्व एवं कर्मवाद के निश्चित प्रभाव पर भी विशेष बल दिया गया मिलता है। इनमें से प्रत्येक के अंतर्गत एक प्रधान कथा में अनेक उप कथाएं क्रमशः गुंफित होती चली जाती हैं और अंत में निष्कर्ष निकल आता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कथा वस्तु जहां अपने सीधे साधे रूप में रहती है लोक गाथा में गिनी जाती है, किंतु जैनियों के यहां उनकी धर्म कथा का आधार बनकर वही एक विचित्र रूप धारण कर लेती है। उदाहरण के लिए सदैव सावलिंग की जो प्रेम कथा राजस्थानी भाषा में मिलती है वह एक शुद्ध प्रेमाख्यान के रूप में प्रचलित है, किंतु उसी का गुजराती रूपांतर जैन रचयिताओं के हाथ में पड़कर वृदाकार धारण कर लेता है और श्रावक धर्म के उपदेश का साधन भी बन जाता है। इस प्रकार एक दूसरे ढंग का उदाहरण हमें तमिल साहित्य में मिलता है, जहाँ जैन कवि इलंगो द्वारा निर्मित शिल्प दिकारम में कर्ण की एवं कोलंग की कथा अपने पूर्वार्ध में एक सुंदर लोक गाथा के रूप में चलती है, किंतु अपने मणि मेखले वाले उत्तरार्ध रूप में सहनार कवि के हाथों में पढ़कर बौद्ध धर्म के प्रचार का साधन बन जाती है और उनमें से वह सरल नहीं रह पाती। लोक गाथाएं जहाँ कहीं भी अपने विशुद्ध प्रारंभिक रूपों में पाई जाती हैं, अत्यंत मार्मिक और मनोहर कही जा सकती हैं। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कश्मीर तथा अन्य कई प्रांतों की भाषाओं में ऐसी रचनाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। राजस्थानी का ढोला मारूरा दुहा नामक प्रेमाख्यान एक ऐसी ही प्रेम गाथा के उदाहरण में दिया जा सकता है। इसके प्रेमी एवं प्रेमिका के निश्चल उद्गार, उनका निर्विकार भोलापन तथा उनकी आस्था एवं उत्साह से भरे सरल यत्न हमें अपनी ओर बर्बस खींच लेते हैं। हम उनकी जीवन यात्रा में उनके साथ चलने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं और उनकी हल्की से हल्की चेष्टा भी हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहती। ढोला मारूरा दुहा पर अपभ्रंश एवं चारण काल का प्रभाव स्पष्ट है और यह हमें अपने ढंग की अद्वितीय प्रेम गाथा है। ससी व पूर्णो, हीर व रांझा, मैना सत, माधवानल, काम कंदला आदि भी प्राय इसी वर्ग में आती हैं और ये भी अपने अपने क्षेत्रों में उसी प्रकार लोकप्रिय हैं। माधवानल, काम कंदला की प्रेम गाथा के तो अनेक रूप प्रचलित हैं और उसमें कई आवश्यक परिवर्तन भी हो चुके हैं, किंतु उसकी मूल कथा वस्तु को पहचान पाने में विशेष विलंब नहीं लगता और यही बात अन्य अनेक लोक गाथाओं में भी चरितार्थ की जा सकती है। इन लोक गाथा परक प्रेमाख्यानों में न तो पात्रों का बाहुल्य होता है, न इनकी विविध घटनाओं में ही कोई जटिलता आ पाती है। इनके कथानक का क्रमिक विकास अपने आप स्वाभाविक ढंग से होता चला जाता है और इनके बीच होने वाले वर्णन भी अधिक बाधक नहीं होते। लोक गाथा का प्रभाव, यदि ध्यान पूर्वक विचार किया जाए तो बहुत से साहित्यिक प्रेमाख्यानों को भी हम किसी न किसी लोक गाथा से ही प्रभावित पाएंगे। साहित्यिक प्रेमाख्यानों में से जिनकी कथा वस्तु काल्पनिक है उनका साचा इन लोक गाथाओं जैसे ही निर्मित रहा करता है। जो पौराणिक है उसमें सजीवता लाने के लिए हमें इन प्रचलित प्रेम कहानियों का ही रंग भरना पड़ता है। यहाँ तक कि जो प्रेमाख्यान ऐतिहासिक घटना चक्रों पर आश्रित हैं और जिनके पात्र कभी जीवित रह चुके हैं उन पर भी इनके रोमांस की पॉलिश चढ़ानी पड़ती है। बहुत से ऐतिहासिक पात्रों पर इन आख्यानों का रंग इतना गाढ़ा चढ़ जाता है कि वे वास्तविक व्यक्तियों को अपदस्थ कर देते हैं और सर्वसाधारण के मानस पटल पर उनकी छाप सदा के लिए अमिट बन जाती है। उदाहरण के लिए पद्मिनी के प्रेमाख्यान में हमें जिस अलाउद्दीन के दर्शन होते हैं उसका पता इतिहासकारों की रचनाओं में नहीं चलता, उनमें केवल थोड़े ही संकेत भर मिलते हैं जिनकी प्रामाणिकता के विषय में अभी आज तक विवाद है। पृथ्वीराज एवं संयोगिता की कहानी जिस रूप में गढ़ी जा चुकी है उसका पाना किसी भी इतिहास ग्रंथ से दुर्लभ है, किंतु वही रूप हमारे लिए अधिक सजीव है। प्रेमाख्यानों का एक रूप हमें दीर्घगाथा काल की प्रेम कथाओं में भी मिलता है। इसमें कोई राजपुरुष अथवा बादशाह किसी सुंदरी का वर्णन सुनकर उसी की ओर आकृष्ट होता है और उसे पाने के लिए अनेक यत्न करने लग जाता है। उसके यहाँ दूत भेजना, प्रलोभनों का साधन उपस्थित करना तथा उसके पति एवं पिता को धमकाना आरंभ हो जाता है। इसके लिए अनेक राजनीतिक दाव पेच खेले जाते हैं, धोखेबाजी की जाती है इसके और बहुत से भीषण युद्ध भी किए जाते हैं। ये यत्न प्रेमियों के लिए न केवल अपनी मान मर्यादा के प्रश्न खड़े कर देते हैं अपितु इन पर जीवन मरण तक निर्भर हो जाता है। वे अपनी सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं, किंतु ऐसे प्रेमाख्यानों में सदा एकांतिक प्रेम ही काम करता नहीं जान पड़ता, न इनका पूरा प्रभाव सदा सभी प्रेम पात्रियों पर एक समान लक्षित हुआ करता है। ऐसे प्रसंगों में शुद्ध प्रेम का स्थान अधिकतर कामुकता ले लिया करती है और प्रेमाख्यान का रूप केवल गौण बनकर ही रह जाता है। मुस्लिम शासकों के संबद्ध अथवा बहुत से राजपूत राजाओं पर आश्रित प्रेमाख्यानों के विषय में यह बात पूरे तौर पर लागू होती है। नवीन पद्धति का सूत्रपात, सूफियों के भारत में आकर अपना मत प्रचार करने लगने पर एक किंचित नवीन प्रेमाख्यान पद्धति का सूत्रपात हुआ। सूफी लोग प्रेम की पीर को प्रश्रय देते थे और वे इश्क मजाजी भी इश्क हकीक का बीज पाया करते थे, इसलिए उन्होंने भारतीय प्रेमाख्यान की प्रचलित परंपराओं का सूत्र पकड़कर उसे अपनी मजहबी नुक्ते नजर के अनुसार मोड़ने के यत्न किए। उन्होंने बहुत से ऐसे प्रेमाख्यानों को अपनाना आरंभ किया जो अत्यंत लोकप्रिय थे और उन्हें उपमिति कथाओं के रूप दे दिए। उन्होंने कई एक ऐतिहासिक एवं अर्ध पौराणिक प्रेम कथाओं को भी लिया और उन पर अपना रंग चढ़ाया। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने प्रेम कथाओं की कथा वस्तु का विकास अपनी प्रेम साधना पद्धति के समानांतर करना चाहा। यह एक ऐसा यत्न था जिसमें पूरी सफलता का पाना बहुत कठिन था और इसलिए वे सभी पूर्णता कृत कार्य भी नहीं हो सके। फिर भी विरह यातना, कष्ट सहना तथा सौंदर्य आदि के अतियुक्ति पूर्ण वर्णनों का द्वारा उन्होंने प्रेम साहित्य के एक नवीन अंग की पूर्ति कर दी। अपनी इस्लामी विचारधारा के मनोरम चित्रों का अंकन कर उन्हें भारतीय साहित्य में एक गौरवपूर्ण स्थान दिला दिया। उनका परमात्मा को प्रियतमा मानकर चलना, विरह को प्रेम से भी अधिक महत्व देना तथा एक रचना पद्धति विशेष को अपनाकर उसे अधिकाधिक प्रचलित करने में यत्नशील होना भारतीय न होने पर भी आज स्थायी रूप ग्रहण कर चुका है।